रात और गहरी होती जा रही थी। फार्म हाउस के बाहर पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी, लेकिन अंदर विश्वनाथ के भीतर जो तूफान चल रहा था उसके सामने बाहर की हवा कुछ भी नहीं थी। उसने एक और पैग बनाया, हाथ हल्का कांप रहा था। गिलास होठों तक गया और कुछ ही सेकंड में खाली हो गया। उसकी नज़र फिर उसी एल्बम पर जा टिकी, टेबल पर खुली हुई, जैसे हर तस्वीर उसका मजाक उड़ा रही हो। कितने साल, वो बुदबुदाया, कितने साल मेरे सामने रहे तुम दोनों। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। उसे याद आने लगा कि शादी के बाद कितनी बार उसने शामली पर भरोसा किया था, कितनी बार लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया था, कितनी बार उसने सोचा था कि आखिर उसे ज़िंदगी में फिर से खुश रहने का मौका मिला है। और अब उसके सामने सवाल खड़ा था, अगर शामली और आर्यन एक दूसरे को पहले से जानते थे तो उसे बताया क्यों नहीं गया? बस यही सवाल बार बार उसके दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ रहा था। धड़ाम! अचानक उसके हाथ से गिलास दीवार पर जा लगा। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। वो उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा। हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खेल खेला गया हो, एक ऐसा खेल जिसमें वो सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता रहा खुद को, लेकिन असल में सबसे बड़ा मोहरा वही निकला। उसने टेबल पर रखी एल्बम उठाई, कुछ तस्वीरों को घूरने लगा। एक तस्वीर, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर तस्वीर उसे एक नई चोट दे रही थी। उसके दिमाग में अब तर्क कम और भावनाएं ज्यादा थीं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान सच नहीं अपने दर्द को देखने लगता है। मुझसे छुपाया क्यों? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। खाली कमरा उसकी आवाज लौटा रहा था। कोई जवाब नहीं था। वो बार काउंटर तक गया, बोतल उठाई। इस बार गिलास की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे बोतल से एक लंबा घूंट भर लिया। आंखें लाल होने लगी थीं, चेहरा कठोर होता जा रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसने आर्यन को पहली बार बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपनी शुरू की थी। कितने गर्व से लोगों से कहता था, मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाएगा। और शामली, उसने कभी उसे अपने घर की बहू नहीं माना था, सीधे अपनी पत्नी का दर्जा दिया था, सम्मान दिया था, भरोसा दिया था। लेकिन इस वक्त उसके भीतर बैठा आहत आदमी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, क्या मैं इतना पराया था कि ये बात मुझसे छुपाई गई? धड़ाम! इस बार उसने पास रखा क्रिस्टल का शोपीस उठाकर फर्श पर दे मारा। सैकड़ों टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उसकी सांसें और तेज हो गईं। कमरे की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसके भीतर जो टूट रहा था उसके सामने ये सामान कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वो भारी कदमों से सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करते ही फिर वही तस्वीरें सामने आ गईं। कॉलेज, मुस्कुराते चेहरे, साझा यादें, एक ऐसा अतीत जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। और सबसे ज्यादा उसे यही बात जला रही थी, उसे नहीं पता था कि तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। उसे नहीं पता था कि तस्वीरें किसने भेजी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। लेकिन इस वक्त उसका दिमाग हर चीज को धोखे की तरह देख रहा था। उसने धीरे से सिर उठाया। आंखों में अब सिर्फ दुख नहीं था, एक खतरनाक ठंडक उतरने लगी थी, वही ठंडक जो अक्सर बहुत गहरे गुस्से के बाद आती है, जब इंसान चिल्लाना बंद कर देता है और जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। उसने एल्बम बंद की बहुत सावधानी से, फिर उसे अपने सामने रख दिया। कुछ मिनट तक बस उसे देखता रहा। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, टूटा कांच, गिरी हुई कुर्सी, फर्श पर फैली शराब। लेकिन विश्वनाथ अब बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, इतना शांत कि अगर कोई उसे देखता तो शायद डर जाता, क्योंकि उसका गुस्सा अब शोर नहीं कर रहा था, वो भीतर उतर चुका था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर कुछ देर नजर टिकाए रखी, फिर वापस बंद कर दिया। कल, उसने धीरे से कहा, कल मुझे सारे जवाब चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी कठोरता थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वो बिना सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहता था, लेकिन एक बात तय थी, आज की रात ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। भरोसे में पहली दरार पड़ चुकी थी, और जब किसी ऐसे आदमी के भरोसे में दरार पड़ती है जिसने पूरी जिंदगी रिश्तों को अपनी ताकत माना हो, तो उसके बाद आने वाला हर कदम पहले जैसा नहीं रहता। बाहर हवा और तेज हो गई, खिड़की के शीशे हिलने लगे, लेकिन फार्म हाउस के उस कमरे में बैठे विश्वनाथ की नजरें सिर्फ एल्बम पर टिकी थीं, जैसे वो उसी से जवाब मांग रहा हो। और कहीं दूर उसे बिना पता चले किसी की बिछाई हुई चाल धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। ये रहा अगला दृश्य। हवेली में रात काफी हो चुकी थी। डाइनिंग हॉल की घड़ी 10 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन विश्वनाथ का कहीं कोई पता नहीं था। श्यामली बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, कभी कॉल करती, कभी खिड़की तक जाकर बाहर झांकती, फिर वापस आकर बैठ जाती। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, उसने बेचैनी से खुद से कहा। ऑफिस से तो कब के निकल चुके थे। उसने फिर कॉल मिलाई, लेकिन इस बार भी वही नतीजा। फोन बजता रहा, किसी ने उठाया नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला, आर्यन अंदर आया। उसने श्यामली का परेशान चेहरा देखा तो तुरंत समझ गया कि बात क्या है। अभी तक नहीं आए, उसने पूछा। श्यामली ने सिर हिलाया, नहीं, और फोन भी नहीं उठा रहे। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन उसके सामने बैठ गया। पापा ऐसे कई बार काम में उलझ जाते हैं, शायद कोई जरूरी बात हो गई हो, लेकिन बिना बताए, श्यामली बोली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आर्यन। आर्यन ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। आप बेवजह परेशान हो रही हैं, वो ठीक होंगे। लेकिन श्यामली की आंखों में चिंता कम नहीं हुई। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। ये देखकर आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया। वो हमेशा से जानता था कि श्यामली दिल की बहुत भावुक है। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, पापा आते ही होंगे। श्यामली ने सिर झुका लिया, उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। आर्यन ने उसे संभालने के लिए हल्के से अपने पास खींच लिया, बस एक दोस्त की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह, ताकि उसकी घबराहट कम हो जाए। सब ठीक होगा, उसने धीरे से कहा। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। दोनों ने ध्यान भी नहीं दिया। दरवाजे पर विश्वनाथ खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं और हाथ अब भी कसकर बंद थे। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सामने गई और समय जैसे थम गया। उसने देखा, श्यामली और आर्यन एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आर्यन का हाथ उसके कंधों पर था और श्यामली उसकी बाहों के सहारे खड़ी थी। असलियत सिर्फ इतनी थी कि आर्यन उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन विश्वनाथ का दिमाग पहले से ही शक, दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। इसलिए जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसे वैसा नहीं दिखा जैसा वो वास्तव में था। उसके सीने में जैसे किसी ने तेज वार कर दिया। एक पल में फार्म हाउस की सारी तस्वीरें, एल्बम के सारे पन्ने और मन में उठे सारे सवाल फिर से जिंदा हो गए। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं, जबड़ा कस गया, आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ी। श्यामली ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विश्वनाथ जी, आर्यन भी तुरंत पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विश्वनाथ की आंखों में जो चोट थी, वो दोनों ने साफ देख ली, और कमरे का माहौल एक ही पल में इतना भारी हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई अगला शब्द बोलने की।